बानी हजूर स्वामी जी महाराज, गुरु और नाम भक्ति, बचन 19वां, शब्द 6वां। सूरत सुन बातरी, तेरा तनी बसे आकाश।
सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं।
ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप इस शब्द में संत मत को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप उपदेश देते हैं कि हे आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहेगुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। वह परमात्मा सचखंड में बसता है। आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक आत्मा अपने पति से मिलाप नहीं करती, ये ना सुहागन हो सकती है और ना ही मरण जन्म के दुखों और देह के बंधनों से छुटकारा पा सकती है। बहुत से संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर समझाया है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और स्वामी जी महाराज भी इसे स्त्री और पति के रिश्ते से याद करते हैं। रामाकृष्णा मिशन वाले इसको माँ और बेटे के रिश्ते से पुकारते हैं। हजरत ईसा इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाते हैं। इन सब रिश्तों में एक ही भावना समान है, वह प्रेम या प्यार है। इसलिए आम कहा जाता है, परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। हम मालिक से प्यार करके, उसकी भक्ति करके ही वापस जाकर उससे मिल सकते हैं। हमारी आत्मा उस मालिक का अंश है। हम मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। कभी एक जगह जन्म लेते हैं, कभी दूसरी जगह। जहाँ भी पैदा होना पड़ता है, वहाँ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। हम देखते हैं कि किस तरह हमारी खुराक के लिए हजारों जानवरों की रोज हत्या की जाती है, किस तरह रोटते पीटते चीखते चलाते उनकी गर्दन पर छुरियां चलाई जा रही हैं। कभी मन में विचार नहीं आया कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहां जन्म लेना पड़ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? वहां दुख महसूस करेंगे कि सुख? बैल के जामे की हालत देखें, बेचारा थक कर गिर पड़ता है। जमींदार उसे लोहे की आर मार मार कर उठाने की कोशिश करते हैं। घोड़े के जामे की हालत देख लो, किस तरह बोझ लदा है और चाबुक पर चाबुक पड़ रहे हैं। निचले जामों की हालत तो क्या, इस इंसान के जामे को ही देखें। इसे हम अशरफुल मफलूकात कहते हैं, महात्मा इसे सृष्टि का सरताज कहते हैं, हिंदू महात्मा इसे नार नारायणी दे कहकर समझाते हैं। इस जामे में भी सुख नहीं मिलता, शांति प्राप्त नहीं होती। किसी से भी पूछ कर देख लें, दुखों से भरा हुआ दिखाई देता है। कोई औलाद के हाथों तंग है तो कोई औलाद ना होने के कारण दुखी है। किसी को कर्ज लेने का दुख है, किसी को कर्ज देने का। कोई बीमारी से तंग आया हुआ है तो कोई बेरोजगारी के हाथों से परेशान है। कौमों, मुल्कों, मजहबों के झगड़े हमेशा चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये हालत हो कि पता नहीं मौत कब आ जाए, किसके हाथों आ जाए, उस नगरी में सुख और शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए हम सब उस परमात्मा की तलाश में हैं, उस अकाल पुरुष से मिलना चाहते हैं। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हम अपने ख्याल को उस जगह नहीं ले जाते जहां वह परमात्मा बसता है, तब तक हम उससे कभी मिलाप नहीं कर सकते। वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर है और जब भी मिलेगा, देह के अंदर से मिलेगा। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। गुरु नानक साहब भी यही समझाते हैं कि इस देह में बैठकर ही मालिक की भक्ति कर सकते हैं। ये इंसान का जामा 84 लाख योनियों भुगतने के बाद मालिक ने हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकें और इस देह के बंधनों से छुटकारा पा सकें। संत महात्मा दुनिया में केवल भक्ति का तरीका बताने के लिए ही आते हैं। वह केवल शब्द या नाम का भेद देने के लिए आते हैं। वह दुनिया में कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आते। हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना सिखाने या हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। वह तो हमसे मालिक की भक्ति करवा कर हमें देह के बंधनों से आज़ाद करवा कर हमेशा के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। अगर हम पर कोई सबसे बड़ा और सच्चा उपकार है तो वह केवल संतों महात्माओं का है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर महात्माओं के परोपकार की दुनिया के परोपकारों से तुलना किया करते थे। आप फरमाते थे कि मान लें एक जेल में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है, कैदियों को पीने का ठंडा पानी नहीं मिलता। वह बर्फ़ और शक्कर डालकर शरबत वगैरह कैदियों को पिला देता है। प्यासे को पानी देना एक अच्छा उपकार है। दूसरा देखता है कि उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता। वह और अधिक पैसा खर्च करके उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिला देता है। ये भी एक बहुत बड़ा परोपकार है। तीसरा देखता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है, कैदियों के कपड़े फटे पुराने हैं। वह और अधिक धन खर्च करके गर्म कपड़े बनवा देता है। ये परोपकार पहले परोपकारों से भी अच्छा है। ये सब परोपकारी उपकार करते हैं और इन उपकारों से कैदियों की हालत सुधरती जाती है, लेकिन फिर भी वह सब जेल खाने में कैदी ही बने रहते हैं। एक परोपकारी ऐसा आता है जिसके पास जेल खाने की चाबी है। वह जेल खाने का दरवाज़ा ही खोल देता है और सब कैदियों को आज़ाद कर देता है। इस तरह अगर कोई परोपकार सबसे ऊंचा और सच्चा है तो वह संतों महात्माओं का है, क्योंकि वह इस संसार के जेल खाने की चाबी लेकर आते हैं। हमसे शब्द या नाम की कमाई करवाकर हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद करवाने के लिए आते हैं। लेकिन उन महात्माओं के चले जाने के बाद हम उनकी तालीम और उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मुल्कों, मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं। हम महात्माओं के असली उपदेश को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते। हम बाहरी रीति रिवाजों और कर्मकांड में बन जाते हैं। जो एसेंस ऑफ ट्रुथ है, हर मजहब की तय में एक ही है, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। नतीजा ये होता है कि सारी उम्र इन वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात यहीं भटकते फिरते हैं। स्वामी जी महाराज हमारी आत्मा को प्यार के साथ समझाते हैं कि हे आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, वह सचखंड में बसता है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू वापस नहीं पहुँचती, उससे मिलाप नहीं कर लेती, तब तक सुहागन नहीं हो सकती, तेरा 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता।
तजो संग जारी तू देख पिया प्रकाश।
अब आप उपदेश करते हैं कि हे आत्मा, अगर तुझे अपने पिया का नूर देखना है, अपने प्यारे का प्रकाश देखना है, तो मन का साथ छोड़ दे। अगर हमारे और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट है तो वह मन की है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। मन के अधीन जो भी कर्म हम कर बैठते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। ये मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। हम किस तरह एक दूसरे का गला काटने की योजनाएं बनाते रहते हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवाता है, हमारा मन ही करवाता है। जब तक रास्ते में मन की रुकावट है, हमारी आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती। मन की रुकावट को दूर करने का क्या मतलब है? हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी तरह ये मन कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, मगर विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया की शक्लों के अधीन होकर अपने आप को भूल चुका है, अपने असल को नहीं पहचानता। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ये मालिक से नहीं मिल सकती। आत्मा मन का साथ तब छोड़ेगी जब मन ब्रह्म में अपने टिकाने पर पहुंच जाएगा। हम अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक हजारों युक्तियों और तरीकों के जरिए मन को वापस ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में जा छिपते हैं। हम जबरदस्ती हठकर्मों के जरिए मन को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत उस पर हावी भी हो जाते हैं, लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन फिर से उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। हम जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से हटाते हैं, आगे जाकर कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकने लग जाता है। महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि मन को काबू करने से पहले मन की आदत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मन लज्जत का आशिक है। इसकी आदत है कि ये एक चीज़ से प्यार करता है, अगर उससे कोई साफ सुथरी और चीज़ दिखाई दे तो पहली चीज़ को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। मन वैरायटी का आशिक है, एक ही चीज़ को देख देख कर खा खा कर तंग आ जाता है। हमारा सबका अपना अनुभव है कि वह शक्लें या पदार्थ जिन्हें कभी अपना बनाने के लिए जिंदगी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, समय पाकर उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। जब तक हमारे मन को दुनिया की शक्लों, दुनिया के प्यार से ऊंची और पवित्र चीज़ नहीं मिलती, हम लाख कोशिश करें, हम अपने ख्याल को इनमें से कभी निकाल नहीं सकते। वह चीज़ जिसे पाकर मन दुनिया से निकलता है, उसके बारे में स्वामी जी अगली तुक में फरमाते हैं।
चलो गुरु की लारी, तू पावे अजर निवास।
अब आप फिर हमारी आत्मा को उपदेश देते हैं कि हे आत्मा, अगर तू मन का साथ छोड़ना चाहती है तो गुरुमुखों का साथ ढूंढ, क्योंकि उनकी संगत में जाकर ही हमें मन को काबू करने का भेद मिलता है। गुरुमुख बताते हैं कि हमारे अंदर नाम रूपी अमृत दिन रात बरस रहा है, उसका स्वाद बड़ा मीठा है, ऊंचा है, पवित्र है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा, उसका स्वाद लेने लग जाएगा, तभी हमारा ख्याल इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों से निकल सकेगा। गुरु रामदास जी का उपदेश है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम में त्रिग जीवास। जब मन को नाम रूपी अमृत पीने को मिल जाता है, तब उसको तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। अगर इस देह में बैठकर नाम रूपी अमृत को नहीं पीते तो हमारा इस देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, राम नाम मन बेद्या अवर कै करी विचार। हमारा मन हिरन के समान दिन रात भटकता फिरता है, किसी एक स्थान पर टिकता नहीं। जब ये मन राम नाम के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद जाता है, काबू आ जाता है, वापस अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा था ए पाई। जब हम नाम की कमाई करके अपने आप को शब्द में लीन कर लेते हैं, शब्द रूप हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। ये मालिक की भक्ति ही तो है जो हमें हमेशा के लिए अपने असली टिकाने पर पहुंचाती है। सब संतों महात्माओं का यही अनुभव है कि शब्द या नाम रूपी अमृत को पीकर ही हमारा मन दुनिया से अपना ख्याल निकालता है, क्योंकि नाम की लज्जत इतनी मीठी, ऊंची और पवित्र है कि उसे पाकर दुनिया की सभी लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं। अगर किसी को हीरे जवाहरात मिल जाएं तो वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड्डे गुड़ियां से तब तक खेलती हैं, उन्हें संभाल संभाल कर रखती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि जब हमारा ख्याल नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो ये अपने आप दुनिया से अलग होने लग जाता है। गुरु नानक साहब की शिक्षा का, पूरे संतों महात्माओं की शिक्षा का, फिलॉसफी का, बाकी सब साधनों से इतना ही फर्क है कि जहाँ दूसरे लोग ज़बरदस्ती अपने मन को दुनिया से हटाकर हठ कर्मों के द्वारा वश में करना चाहते हैं, वहाँ महात्मा समझाते हैं कि मन इस तरह ज़बरदस्ती वश में नहीं आएगा। जब हम इसे दुनिया की शक्लों के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार दे देंगे तो ये अपने आप दुनिया की लस्तों, दुनिया के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देगा और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जो कुछ भी हमें मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है। सवाल उठता है कि वह शब्द कहाँ है? वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। महात्मा इसी को सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहकर बयान करते हैं। नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक है, दूसरा धुनात्मक है। वर्णात्मक नाम वह है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने प्यार में आकर परमात्मा के जितने भी नाम रखे हैं वह सब लिखने में आ जाते हैं, पढ़ने में आ जाते हैं, बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कई मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई भाषाएँ हैं। हर एक भाषा में लोग उस परमात्मा को अनेक नामों से याद करते हैं। कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई रब, कोई रहीम। इनमें से हर एक लफ्ज़ हमारे लिखने या बोलने में आ जाता है। लेकिन जिस सच्चे शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं, जिसका महात्मा प्रचार करते हैं, वह ना आँखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना जबान से बयान किया जा सकता है। हजूर महाराज जी उसको अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर समझाया करते थे। गुरु अंगद देव जी इस नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना इयों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तौ खस में मिलना। हम इस सच्चे शब्द या नाम का भेद हासिल करने के लिए ही गुरुमुखों की सोबत करते हैं, संतों महात्माओं की संगत करते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, इनकी कोई ना कोई मियाद है, अवधि है। इनका कोई ना कोई वक़्त निर्धारित किया जा सकता है। कोई लफ्ज़ 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, तो कोई 1000 साल पुराना है। उस परमात्मा के हम हज़ारों अनेकों नाम रख चुके हैं। हम पिछले नाम भूलते जाते हैं, अपने अपने प्यार में नए नाम रखते जाते हैं। हजारों अनेकों महात्मा आए हैं और हजारों अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन जिस नाम की स्वामी जी महाराज महिमा करते हैं, सबसे पहले वह नाम था, सबको उस नाम ने पैदा किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। जो भी दुनिया की रचना आँखों से दिखाई दे रही है, इसको परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। गुरु नानक साहब समझाते हैं, शब्दे तरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। उस शब्द ने हमारी धरती, हमारे सूर्य, हमारे चंद्रमा आदि की रचना की है। ये सब दिखाई देने वाली वस्तुएं उस शब्द ने ही पैदा की हैं। वह शब्द हम सब के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। ये बोले या लिखे जाने वाले शब्द हमारे साधन या जरिया हैं। वह शब्द हमारा मकसद या लक्ष्य है। इन शब्दों के जरिए हमें वापस जाकर अपने ख्याल को धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ना है। इन लफ्ज़ों को लेकर हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में नहीं पड़ जाना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू कर देना। ज़रा सोच कर देखें, हमारे ये झगड़े उस वक़्त तक हैं जब तक हमारा ख्याल उस धुनात्मक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, जब तक हम लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर आज हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द या धुनात्मक नाम से जुड़ जाए तो हमारा ना कोई मजहब है, ना कोई कौम है, ना कोई हमारा मुल्क है। संत महात्मा सदा हमें इन वहमों, भरमों और झगड़ों में से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम दुनिया के जीव इन चक्रों में से निकलते नहीं, बार बार इन झगड़ों में फंसे रहते हैं। हम महात्माओं की तलीम से फ़ायदा उठाकर नाम की कमाई करने की कोशिश नहीं करते। वह नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे, बहुत वैगार दुख पाए। जो लोग उस शब्द को देह या शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वे बेगारियों की तरह अपने कीमती वक़्त को ज़ाया करने में लगे हुए हैं। बेगारी कौन होता है? वह जो सारा दिन काम करता है, खून पसीना भी एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस घर आ जाता है। मेहनत भी की, वक़्त भी बर्बाद किया, मगर हाथ पले कुछ ना पड़ा। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि शब्द हमारे शरीर या देह के अंदर है। सवाल उठता है कि नाम देह के अंदर है तो कहाँ है? हमारी देह के दो हिस्से हैं, एक आँखों के नीचे और दूसरा आँखों के ऊपर है। हमारे सोचने का केंद्र आँखों के पीछे है। आप देखें, अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर अपने आप इस नुक्ते या केंद्र पर आ जाता है। कभी भूली हुई बात को याद करने के लिए टांगों पैरों पर हाथ नहीं मारते। आँखों के बीच इस स्थान का हमारे सोचने के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर इन नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये नौ द्वार कौन से हैं? दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो नाक के सुराख हैं, मुंह है, नीचे दो इंद्रियों के सुराख हैं। इस जगह बैठे कभी औलाद की ओर ख्याल चला जाता है, कभी दफ्तर की फाइलों की ओर चला जाता है, कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों की तरफ चला जाता है। इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। जिसके बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल भी आँखों के सामने आ जाती है। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। ये जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं जिनका हम रोज़ सिमरन और ध्यान कर रहे हैं, सब नाशवान हैं, सब फना है। उनका प्यार हमें उन्हीं के साथ बनाए बैठा है। उनके प्यार के कारण हम मरण जन्म के दुखों में फंसे हुए हैं। महात्मा समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ख्याल इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आती है हम सब के अंदर सुनाई दे रही है। वह ना कौम का सवाल है, ना मज़हब का सवाल है, ना मुल्क का सवाल है। हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, उसी एक रास्ते से अंदर जाना है। अपने ख्याल को उसी शब्द के साथ जोड़ना है। अपनी सूरत अथवा आत्मा को नौ द्वारों में से निकाल कर उस शब्द या नाम के साथ जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के द्वार पर पहुँचना है। गुरु अमरदास जी प्यार के साथ उपदेश करते हैं, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। जब तक हमारा ख्याल आँखों के नीचे नीचे है हम मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। अगर जीते जी हमारे काम बुरे और खोटे हैं तो मौत के बाद किसी ने हमें संत महात्मा नहीं बनाना है। जो कुछ भी हमें हासिल करना है जीते जी हासिल करना है। जीते जी मुक्ति किस प्रकार हासिल करेंगे? जब अपने ख्याल को नौ द्वारों से निकालकर दसवीं गली पार कर जाएंगे। उसकी निशानी क्या है? आप समझाते हैं अनहद शब्द बना बनिया कि वहाँ दिन रात अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जब तक हम ख्याल को उस बिंदु या केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहाँ दाता दाद दे रहा है, हम उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? वह अमृत दिन रात आँखों के पीछे बरस रहा है, मगर हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर कभी काम क्रोध की लहरों में फंस जाता है, कभी मुकदमों में दिलचस्पी लेने लग जाता है, कभी कौमों, मुल्कों, मज़हबों के झगड़े में पड़ जाता है, कभी बाल बच्चों के मोह में फंस जाता है। जब तक हम अपने ख्याल को इनमें से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हमारा हृदय नाम रूपी अमृत से किसी हालत में नहीं भर सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब हम गुरुमुखों की संगत में रहेंगे, संतों महात्माओं की संगत करेंगे, तो वह हमें बतलाएंगे कि नाम कहाँ है, किस मार्ग पर चलकर हमें अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है, किस तरह अपने ख्याल को शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया के धंधों में से निकालकर वापस आँखों के पीछे लाना है। वह दौलत हमारे अंदर है और परमात्मा ने हमारे लिए ही रखी है, लेकिन जब तक हम अंदर जाकर उस दौलत को अपना नहीं बनाते हम उस दौलत से कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते। गुरु रामदास जी इस बारे में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कासट में जो है बसंतर मत संजम काड कडीजय, राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काड लई जय। लकड़ी के अंदर आग तो है, लेकिन वह हमें नज़र नहीं आती और ना ही हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि अगर युक्ति से हम लकड़ी पर लकड़ी घिसना शुरू कर देते हैं तो उसमें से आग पैदा हो जाती है, तब हम अग्नि को देख भी सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह राम नाम है ज्योत सबाई, वह राम नाम की ज्योत सबके अंदर है, लेकिन साथ ही आप कहते हैं तत् गुरमत काढ लई जय। इसका मतलब साफ है कि जब तक हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, तब तक हम उस ज्योति से जो कि हम सबके अंदर है फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमें जब भी मुक्ति मिलेगी उस ज्योति के दर्शन करने पर ही मिलेगी। हमें मन के अधीन होकर उस ज्योति के दर्शन करने की कोशिश नहीं करनी है। हम आटा लेकर उसका दीपक बनाकर तेल या घी और बत्तियां डालकर ज्योति जला लेते हैं और दिन रात उन्हें माथा टेकते रहते हैं। ये विचार करने योग्य बात है कि हमारे गुरुद्वारों में ज्योति जलाई जाती है, गिरजाघरों में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, मुसलमान मज़ारों पर दिए जलाते हैं। ये चीज़ें महात्माओं ने ये समझाने के लिए बनाई थी कि हम सब के अंदर इस प्रकार की ज्योति दिन रात जल रही है। बाहर की ज्योति इसलिए बनाई थी कि हमें अंदर की ज्योति के दर्शन करने का शौक पैदा हो। अंदर ज्योति के दर्शन करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन हमें अंदर जाने नहीं देता, दुनिया में फंसा देता है और हम दिन रात बाहर की ज्योति को ही माथा टेकते रहते हैं। इसी तरह गुरुद्वारों में शंख बजाते हैं, हर एक मंदिर के अंदर जाने से पहले घंटा बजाया जाता है, हमारे गिरजाघरों में पियानो बजाए जाते हैं। ये सब बातें महात्माओं ने हमें समझाने के लिए बनाई थी कि इस प्रकार की मीठी और सुरीली आवाज़ हम सब के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करके उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। इस आवाज़ को सुनने से दुनिया के स्वाद फीके पड़ जाएंगे, हमारा ख्याल धुर धाम अपने घर की ओर चल देगा। हमने अंदर जाकर ना वह शंख सुना, ना घंटे की आवाज़ को सुना, बल्कि मंदिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों के बाहर के घंटे शंख आती बजाने में ही लगे रहे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिवलाई। हम सब के अंदर दिन रात वह ज्योति जल रही है, जिस ज्योति में से मीठी सुरीली से सुरीली आवाज़ निरंतर निकल रही है। जब हम उस आवाज़ को सुनेंगे, उस ज्योति के दर्शन करेंगे तो दुनिया का मोह दूर हो जाएगा और सच्चे साहेब के साथ प्यार पैदा हो जाएगा। वह कौन सी वाणी है? ये वह वाणी है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मंड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, वाणी वज्जी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उस वाणी ने सारी दुनिया की रचना की है, वह वाणी कभी नाश नहीं होती, फना नहीं होती। अगर हमारा कोई गुरु है तो वह वाणी है। गुरु रामदास जी का फरमान है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। वह वाणी हमारा गुरु है जिसे सुनकर हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं। उस मीठी धुन को वाणी कहें, शब्द कहें, नाद कलमा या बांगे आसमानी कहें, अमर नाद राम नाम धुन या इसमें आज़म कहें, हज़रत ईसा उसे वर्ड या लागोस कहते हैं। अलग अलग मुल्कों और मज़हबों के महात्माओं ने उसी चीज़ को, उसी ताकत को अलग अलग शब्दों के ज़रिए बयान किया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द के साथ जुड़ता है तो उसकी लज्जत इतनी मीठी, ऊँची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर दुनिया की सब लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं।
गहो शरण कोए साधरी जो मिले शब्द करबास।
अब आप प्यार के साथ बतलाते हैं कि जिन गुरुमुखों की तलाश करनी है, जिनसे नाम या शब्द का भेद लेना है, वह कैसे महात्मा हैं, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमको शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा को ढूंढना है, जो स्वयं शब्द की कमाई करते हो और हमसे भी कमाई करवा लें। हमारा असली गुरु तो नाम या शब्द है। महात्मा हमारी आत्मा को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम महात्मा की महिमा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। उन्हें वापस जाकर शब्द या नाम में समा जाना है, इसलिए हम भी उनके प्यार में बंधकर शब्द या नाम में जा समाते हैं। ऐसे महात्मा समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि दाता बनकर आते हैं। वह कुछ देते ही हैं, लेते नहीं। संतों महात्माओं का इतिहास पढ़कर देख लें। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर गांव में खेती की, अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश की, साध संगत की मुफ्त सेवा की। कबीर साहब जीवन भर ताना तनते रहे। गुरु रविदास जी सारी उम्र जूतियां गांठते रहे। इस तरह सब महात्मा कोई न कोई काम काज करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई करते हैं और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक साहब तो यहाँ तक उपदेश करते हैं, गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणिए से। जो गुरु और पीर अपने शिष्यों सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पैरों पर माथा ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा को ढूंढना है जो स्वयं मेहनत की कमाई करता हो और हमसे भी मेहनत की कमाई करवाए। जब तक हम मेहनत की कमाई नहीं करते, हमारे अभ्यास में बरकत ही नहीं हो सकती। आप देखते ही हैं कि कोई भी इंसान दूसरों को यूं ही पैसे नहीं दे देता। जब हम किसी साधु को खिलाते हैं, कुछ देते हैं, तो मन में कई इच्छाएं रखते हैं। अपनी गंदगी निकालकर उसके सिर पर डालने की कोशिश करते हैं। जिन इच्छाओं के साथ खिलाया है, उन्हें भरने भुगतने के लिए उस साधु को देह के बंधनों में आना पड़ेगा और साथ ही खिलाने वाले को भी आना पड़ेगा। इसलिए महात्मा हमें अपनी मेहनत की कमाई करने के लिए कहते हैं। दुनिया में अपना फर्ज समझ कर रहना है। इस बात को स्वामी जी महाराज अगली तुक में स्पष्ट करेंगे कि किस तरह हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में नहीं लिबड़ना है। हमें महात्माओं के उपदेश पर चलने की कोशिश करनी है। जब तक हमारे मन में भरोसा और विश्वास नहीं आता, हमारा ख्याल कभी नाम की कमाई की ओर नहीं जा सकता। महात्मा को ढूंढकर हमें अपने आप को उनके हवाले कर देना है। मन की मत को छोड़कर गुरुमुखों की मत पर चलने की कोशिश करनी है। गुरुमुखों की मत क्या है? स्वामी जी महाराज ने पिछली तुक में बताया था कि अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो और शब्द या नाम के साथ जोड़ो।
तन पिंजरा ये है, काल का क्यों करें पराई आस।
सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि वह कौन सी चीज है जो मालिक की भक्ति नहीं करने देती। वह देह का प्यार है, जो हम देह में बैठकर दिन रात ऐशो इशरत शराबों कबाबों आदि में लगे हुए हैं। अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि हमारा इस देह के साथ क्या संबंध है। ये किराए का मकान है, पराया मकान है, काल का पिंजरा है। जितने जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं, उन्हें पूरा करने के बाद इस देह को यहीं छोड़ जाना है। ये देह आज तक ना किसी की साथ गई है और ना जा ही सकती है। जब इस देह को ही साथ नहीं जाना, तो इसमें बैठकर जो दुनिया के साथी बनाए हैं, वे हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? हम अपने बहनों भाइयों मित्रों संबंधियों के लिए कौन कौन सी ठगियां और बेईमानियां नहीं करते, किन किन असूलों को कुर्बान नहीं करते, उनके लिए कितना समय बर्बाद करते हैं। उन सब का संबंध केवल हमारे शरीर के साथ है। इनमें से कई हमें छोड़कर चल देते हैं और कईयों को हम छोड़ जाते हैं। मौत के समय ये हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। किसी को ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किधर से आते हैं और हमें लेकर किधर चले जाते हैं। इन सब से हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई यार दोस्त बनकर आ गया, कोई बहन भाई बनकर आ गया, कोई बेटा बेटी बनकर आ गया। जैसे जैसे इनके साथ लेन देन का हिसाब खत्म होता है, सब अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। इसलिए इनमें अपना फर्ज समझकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है। संत मत हमें कायर और बुजदिल नहीं बनाता। हमें दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में नहीं लिबड़ना, अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद भी खा लेती है और सूखे पंखों के साथ उड़ भी जाती है। अगर वह शहद के बीच में चली जाती है तो शहद भी नहीं खा सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। अगर हम इस दुनिया के किनारे पर बैठेंगे तो अपने लेन देन का हिसाब भी खत्म कर जाएंगे और मालिक की भक्ति करके वापस जाकर उसे मिल भी जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि इस देह में बैठकर हमें असली चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो हमें देह को इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही ना कर सके, ना ही इतना सुख देना है कि ये ऐशो आराम में डूब जाए, शराबों कबाबों में फंस जाए और हमारे पास मालिक की भक्ति करने के लिए कोई समय ही ना रहे। अपनी देह से पूरा पूरा काम लेना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। जो सज्जन अपनी देह या शरीर के अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं वह गुरमुख हैं, वह हमेशा के लिए इज्जत पा लेते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमें मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। गुरु नानक साहब का उपदेश है, सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए उड़ेता एका बार। हमारी देह एक पिंजरा है जिसमें आत्मा एक तोते के समान है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्रेम करके कई किस्म की बोलियां बोलता है, इसी तरह हमारी आत्मा इस देह से प्रेम किए बैठी है और कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की बोली बोलती है। गुरु साहब समझाते हैं कि अगर आत्मा देह का प्यार छोड़कर सच चुगे अमृत पिए, यानी हम अपने ख्याल को सच या शब्द के साथ जोड़ दें, अपने ख्याल को तीसरे तिल में रखकर उस अमृत को पीना शुरू कर दें, तो उड़ेता एका बार हम हमेशा के लिए देह की कैद से छुटकारा प्राप्त कर लें। ये देह का प्यार है, दुनिया का प्यार है, जो हमें बार बार देह की कैद में खींच कर ले आता है। आप समझाते हैं कि इस देह का क्या मान करने में लगे हुए हो। बड़े बड़े महारथी जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज कब्रों में पड़े हुए हैं या राख की ढेरी बने बैठे हैं। हमें मान किस चीज़ का है? जवानी का मान करते हैं, क्या किसी का बुढ़ापा नज़र नहीं आया? तंदुरुस्ती का मान है, क्या कभी किसी बीमार की हालत नहीं देखी? धन दौलत का अहंकार है, तो क्या कभी किसी भिखारी की हालत नहीं देखी? ये सब मान झूठे हैं। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि जहाँ भी और जिस हालत में भी परमात्मा रखता है, उसी में परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। हर हालत में अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना चाहिए, ताकि हमारा देह की कैसे हमेशा के लिए छुटकारा हो सके।
दस इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस।
अब आप फिर आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे आत्मा, अगर तुझे अपने प्रियतम से मिलना है, पिया का नूर और प्रकाश देखना है, तो अपने गले में पड़े हुए इंद्रियों के भोगों के फंदे को उतार दे। आप समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों की लस्तों में लगे रहते हैं। हम समझते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा, मन को कह देते हैं कि नरकों स्वर्गों की कहानियां महात्माओं ने यूं ही हमारा खून सुखाने के लिए बनाई हुई हैं। इंसान का जामा तो परमात्मा ने शराबों कबाबों विषय वकारों के लिए बख्शा है। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाना चाहते हैं। हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि इस देह में बैठकर किए गए सब बुरे और खोटे कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। ये हमारे गले में फंदा है। मौत के समय हम रोएंगे चीखेंगे, लेकिन उस वक़्त कौन किसी की पुकार और फरियाद सुनता है? अगर कर्म करते समय नहीं सोचेंगे तो नतीजा भुगतने के समय कौन हमारी मदद करेगा? इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। अपने मन को इंद्रियों के भोगों से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मन कब रुकेगा? जब ये सिमरन में लग जाएगा। हमारा मन कभी टिककर नहीं बैठता, ये कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इसलिए हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जो हम सबका बादशाह है, सबका दाता है, जिसे कभी नाश या फना नहीं होना है। वह निश्चल है, मरण जन्म में नहीं आता। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याइंदा। जो सज्जन उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। वह हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से निकल जाते हैं। जब हम अपने मन को सिमरन में लगा देंगे तो ये अपने आप ही भोगों में से निकल जाएगा। हमें अपने ख्याल को दुनिया से हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है। जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है तो अपने आप दुनिया से टूट जाता है। ये सिमरन ही है जिसके द्वारा हमें अपने ख्याल को पैरों के तलवों से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब तक ख्याल यहाँ इकट्ठा नहीं होता, तब तक वह शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकता। हम दुनिया के जीव आम तौर पर सिमरन करने की कोशिश ही नहीं करते और ना ही शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं। हमारा ख्याल सिमटता नहीं, जिसके कारण ना तो हम उस शब्द की लज्जत ले सकते हैं और ना ही शब्द अपनी ओर हमें खींचता है। इसलिए सवेरे उठकर सबसे पहले 2.5 घंटे सिमरन को देने चाहिए। जब हम गाड़ियों या बसों में सफ़र करते हैं, मन क्या क्या दलीलें नहीं करता, क्या क्या बातें नहीं सोचता। हम पिछली बातें सोच सोच कर ही दुखी होते रहते हैं। हमारे 90% दुख मुसीबतें पिछली सोचों में से ही निकलती हैं। अगर उस समय सिमरन करेंगे तो हमारा मन ऐसे विचारों में नहीं उलझेगा। दूसरे, जब हम भजन पर बैठेंगे तो हमारा ख्याल जल्दी आंखों के पीछे इकट्ठा होकर शब्द के साथ जुड़ जाएगा। जब सारे दिन में 21 या 22 घंटे दुनिया के पदार्थों और शक्लों का ही ध्यान या सिमरन किया, तो भजन में बैठते समय मन को सिमटने में भी उतना ही समय लगना है। इतना समय हमारे पास कहाँ हो सकता है। इसलिए सिमरन करने की तो हमें इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे हों, तब भी सिमरन हमारे अंदर अपने आप जारी रहना चाहिए। सिमरन ही हमारे ख्याल को विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों, दुनिया की शक्लों में से निकाल कर शब्द या नाम के साथ जोड़ता है। जब एक बार हमारे मन को शब्द या नाम की लज्जत आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हमारा ख्याल किसी और दूसरी तरफ नहीं जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो हम इंद्रियों के भोगों में फंस रहे हैं, ये अपने गले में फंदा डाल रहे हैं। इसलिए आप आत्मा को उपदेश देते हैं कि ए आत्मा, अपने ख्याल को इंद्रियों के भोगों में से निकाल।
नौ द्वारन में बंध रही अब चैन नहीं एक स्वास।
अब आप समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, तब तक दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय पाकर इन्हें भी मुसीबतों में बदल जाना है। जब तक हमारा ख्याल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 अग्नियों में जल रहा है, हम सुख शांति कैसे पा सकते हैं। हम दुनिया के जीव, दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों में से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि ये जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम दुखों और मुसीबतों में हैं। हमें सुख और शांति कैसे मिलेगी, ये आगे बताते हैं।
दसवीं खिड़की खोल री कर परम विलास।
आप आत्मा से कहते हैं कि अगर तू सुख और शांति चाहती है तो वापस अपने घर चल। जब तक आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसको असली अर्थों में सुख और शांति नहीं मिल सकती। आत्मा रूपी स्त्री को जब भी शांति मिलेगी, परमात्मा रूपी पति के प्यार में, पति के चरणों में से ही मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर 10वीं खिड़की खोलकर आगे चलकर अपने घर के रास्ते पर आ जाओ। अपने घर की ओर वापस जाने पर ही शांति मिलेगी। गुरु अमरदास जी का उपदेश है, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिय पाई। जो सज्जन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वह हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। जो स्त्री अपने पति के चरणों से बिछड़ी हुई है उसे चाहे दुनिया के कितने ही पदार्थ दे दें, चाहे कितनी भी मान बढ़ाई दे दें, उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती। आप जानते ही हैं कि परमात्मा ने हमें सब कुछ भी क्यों ना दिया हो, जब हम अकेले बैठे हों सब कुछ होते हुए भी मन में खुशी नहीं होती, ये कुछ ना कुछ कमी महसूस करता रहता है। पता भी नहीं चलता कि मन किस चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ है। ये हमारी आत्मा की कुदरती कशिश है अपने असल की ओर। ये कशिश ही हमें मालिक की भक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हमारी आत्मा का मालिक से मिलाप नहीं होता इसको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए आप आत्मा को समझाते हैं कि अपने घर वापस चल, पिया से मिलाप कर।
सत गुर पूरे कह रहे तू मान बचन विश्वास।
स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हमें संतों महात्माओं के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उन्नति नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से फायदा उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ, संत महात्मा हर युग में ही नाम का प्रचार करते आए हैं। जब तक हम उनके अनुभव से लाभ उठाकर नाम की कमाई नहीं करते हम किसी हालत में भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।
राधा स्वामी नाम पाज होए करम सब नाश।
मैंने कई बार अर्ज की है कि राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं है। जैसे परमात्मा के हजारों अनेकों अन्य नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं, इसी तरह स्वामी जी महाराज ने उस मालिक को राधा स्वामी कहकर पुकारा है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है पति यानी परमात्मा। आप इस शब्द के शुरू में ही बयान कर चुके हैं कि ये आत्मा स्त्री है, परमात्मा इसका पति है। बहुत से संतों महात्माओं ने उस परमात्मा को स्वामी कहकर पुकारा है, लेकिन वह किसका स्वामी है? आत्मा का स्वामी है। जिस प्रकार परमात्मा के और अनेक नाम हैं, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज उसे राधा स्वामी नाम द्वारा याद करते हैं। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या स्त्री क्या पुरुष, दुनिया के सब जीव अपने अपने कर्मों का हिसाब देने में लगे हैं। जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता हमारी आत्मा निर्मल स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकती और ना ही परमात्मा के साथ मिलने के काबिल हो सकती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब निपटाने के लिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। कर्म 3 प्रकार के हैं, एक प्रारब्ध कर्म, दूसरे क्रियमान, तीसरे संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनके कारण ये इंसान का जामा मिलता है। जो कर्म पीछे कराए हैं उन्हें अब भुगत रहे हैं, जो कुछ अब करेंगे उसे आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। किसान पिछली फसल घर में ले आता है और आगे के लिए फिर खेत में बीज डाल देता है। जो प्रारब्ध कर्म हैं जिनके कारण इंसान का जामा मिला है ये हमें देह में बैठकर भुगत लेने हैं। मालिक की मौज और भाणा समझकर उनका हिसाब भुगत लेना है। भाणे में रहने का अर्थ है कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खुशी खुशी चुका दें। अगर आगे मालिक की भक्ति करेंगे तो हमसे ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं होगा जिसका नतीजा भोगने के लिए हमें देह की कैद में आना पड़े। इस प्रकार हम नए या किरेमान कर्मों से बच जाएंगे। जो हमारे संचित कर्म हैं वह पिछले कई जन्मों से इकट्ठे होते आए हैं, उन्हें नाश करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही साधन है, वह ये है कि हम शब्द या नाम की कमाई करें। जब हमारे तीनों प्रकार के कर्म नाश हो जाते हैं तो हमारी आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाती है, अपने असल में मिलने के काबिल बन जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति करनी चाहिए, नाम या शब्द की कमाई करनी चाहिए। जब तक आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र नहीं होती, ये कभी अपने असल, अपने मूल से मिलने के काबिल नहीं हो सकती।
राधा स्वामी नाम पाज होए कर्म सब नाश।